मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 18 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे सूचना के अधिकार विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा विशेषकर अपने उन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए इस पर कुछ बातें कही थी। अखबारों में भी फिर वो खबर छपी है और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हैं उन्होंने ये बात कही थी। मैं अपने ऑनलाइन के स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा, या यूं कह लीजिए कि ये सूचना देना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर डाले गए हैं उसमें जो लोकसभा पर लेक्चर है उसे आप इस अवसर पर जरूर सुन लें। मैं ये जानकारी देखिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप हो सकता है कि वहां तक नहीं पहुंचे हों या किसी दूसरे विषय के लेक्चर सुन रहे हों, लेकिन तैयारी करने का एक आदर्श नियम यह भी होता है कि अगर कोई घटना घटी है और उस पर बात की जा रही है तो बेहतर है कि थोड़ा सा समय निकालकर, अतिरिक्त समय निकालकर कम से कम उस लेक्चर को तो सुन लें। तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर सुने, उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से लोकसभा में अब समय आ गया है कि सीटों की संख्या में परिवर्तन होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए, अमेरिका में क्या स्थिति है, ब्रिटेन में क्या स्थिति है। मुझे ध्यान आ रहा है कि इस तरह की तुलनाएं करते हुए मैंने अपनी बात रखी है। ये इत्तफाक है कि प्रणब मुखर्जी जी ने ये बात कही है और वो बात पहले लेक्चर में ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो बहुत बेहतर होगा कि आप उनमें एक तालमेल बैठा लें। आइए अब कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के देश में जो स्थिति है उन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे। तो अगर नए नए तथ्य मिलते रहेंगे तो मैं चाहूंगा कि इस पर मैं नई नई बातें आपके सामने रखता जाऊं। अभी जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में आप जानते होंगे। चीन ने कहा है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए और मोस्ट प्रोबेबली सुरक्षा परिषद की मीटिंग भी बुलाई जाएगी, खासकर इस मुद्दे को लेकर के कि भारत ने अभी जो नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है ये कितना सही है कितना गलत है इस बात को लेकर। इसके साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने भी इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि उसको लगता है कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि भारत जो भी देश इस तरह की बातें कह रहे हैं या संगठन इस तरह की बातें कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि भारत को कहना भी चाहिए और भारत कह भी रहा है कि हमारा आंतरिक मामला है, हम सार्वभौम देश हैं, तो आपको इस पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है, आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसा भी लोग महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इस कानून को लेकर के हमारे कुछ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्तों में कुछ खटास आ जाए या ढीलापन आ जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अब बहुत बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हमने बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया है और हमने ये माना है कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बांग्लादेश को भी ये लग रहा है कि क्या हम सच में किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं धर्म के आधार पर, तो वो इसको अलग तरीके से ले सकते हैं। हो सकता है कि अफगानिस्तान भी कुछ इसे अलग तरीके से ले ले। तो इन देशों के साथ भी संबंधों में हो सकता है कि आगे चल करके एक यह बिंदु शामिल हो जाए जो खटास का कारण बन सकता है। एक तथ्य जो अभी इसके विरोध के पक्ष में जो कहा जा रहा है, जिसकी चर्चा शायद मैंने इससे पहले नहीं कही है, वो ये है दोस्तों कि हमारे पड़ोस में कुछ और भी देश हैं जैसे भूटान है, नेपाल है और म्यांमार है। म्यांमार की चर्चा खासकर हो रही, जो जिसका पूरा नाम बर्मा था, कि वहां से रोहिंग्या मुसलमान काफी संख्या में भारत आए हुए हैं। चूंकि वो मुस्लिम हैं तो अब उन्हें नागरिकता इस संशोधन के तहत नहीं मिल सकेगी। तो उनका ये कहना है कि भाई इन्होंने क्या, आप कह लीजिए कि अपराध किया है, इन्हें भी नागरिकता मिलनी चाहिए, तो उनकी यह मांग भी है। तो यह भी एक बिंदु है जिसको लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब इस भारत के इस कानून का विरोध किया जा रहा है या तर्क दिए जा रहे हैं तो उसमें इस तर्क को शामिल किया जा रहा है कि भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जिसमें श्रीलंका भी है, वहाँ भी जो प्रताड़ित लोग हैं या वहाँ से जो लोग भारत आकर के शरण मांग रहे हैं या आ चुके हैं, उन्हें भी नागरिकता दी जानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके सामने रखने थे। दोस्तों, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, वो अब अगले सेना प्रमुख होंगे। दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप नाम याद रखें, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने। परवेज मुशर्रफ जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, बेसिकली वो सैन्य शासक थे, बाद में वो राष्ट्रपति बन गए थे, उन्होंने देश में आपातकाल लगाया था, तो वहां के कोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। हालांकि अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई है। और इस तरह से पाकिस्तान में ये पहले सेना अध्यक्ष तो पहले हैं, मतलब सेना से जो राष्ट्रपति बने थे कि जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ऐसे इससे पहले जो बेनजीर भुट्टो के पिताजी साहब थे, उनके जो वालिद थे, उनको फांसी की सजा बकायदे दी जा चुकी है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के रूप में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जो विश्व आर्थिक मंच है, उसकी रिपोर्ट, मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो वीमेन एम्पावरमेंट है, जो महिलाओं की स्थिति आपके सिलेबस में है, और इस पर हमेशा मेंस में कम से कम दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो उसके लिए एक डेटा है। और डेटा यह है कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसने अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये तथ्य आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इस ग्लोबल रिपोर्ट के आधार पर भारत की स्थिति पहले की तुलना में खराब हुई है, वो चार पायदान और नीचे आ गया है, और उसकी जो रैंकिंग है वह 112वीं पहुंच गई है। 112वीं रैंकिंग बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं मानी जाती, मतलब 153 देश इसमें शामिल किए गए हैं जिसमें हम 112वें स्थान पर हैं, और पहले से स्थिति कहीं ना कहीं बदतर हुई है। बल्कि देख के सोचिए कि बांग्लादेश 50वें स्थान पर है, मतलब उसकी स्थिति हमसे बहुत अच्छी है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत में है, जो नारी शिक्षा, नारी स्वास्थ्य और राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं, और इसके कारण भारत में महिलाओं को समान स्थिति नहीं मिल पा रही है। पहली रिपोर्ट ये 2006 में आई थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कि भारत 112वें स्थान पर है, पिछले साल की तुलना में चार पायदान वह नीचे आ गया है। तो ये डेटा आपके काम का होगा। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में एक अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है, राज्यपाल के कार्यों की समीक्षा हो, इसे आप सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह से राज्यपाल के पद को लेकर के एक बार फिर से जबरदस्त किस्म की बहस छिड़ गई है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, और बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे अगर संभव हो तो आप नोट कर लें, नहीं तो आप डाउनलोड करके अपने पास ही रख लें। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और वह सूचना के अधिकार को लेकर। दरअसल अभी सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के, जो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत ही तीखे शब्दों में कहा है कि ये जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है, ये किसी का व्यवसाय कैसे हो सकता है, ये किसी का बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनका ये मानना है कि सूचना के अधिकार के तहत जब बहुत सी सूचनाएं मांगी जाती हैं तो उनका जो लेटर हेड होता है उसमें बकायदे लिखा होता है, व्यक्ति का नाम तो होता ही है लेटर हेड में, और लिखा हुआ होता है RTI एक्सपर्ट। अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे RTI एक्टिविस्ट, यानी कि सूचना का अधिकार का कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट। तो इससे साफ लग रहा है जैसे कि ये आपका काम हो गया है, जबकि जो सूचना का अधिकार है, बहुत अच्छी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है, और वो ये है कि जो सूचना है इसका उद्देश्य, जो सूचना का अधिकार है, कि लोगों को वे सूचनाएं देने से था जिससे वे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सूचना किसी ऑफिस से सरकार के मांग रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह सूचना आपको प्रभावित कर रही है। अब ये नहीं कि मैं अब लोगों के बिहाफ पर सूचनाएं मांग रहा हूं, मैं इसी का बिजनेस करने लगा हूं, काम करने लगा हूं कि ठीक है आप मुझे 2000 रुपए दीजिए, मैं आपके लिए सूचना मांग लेता हूं, मैं आपके लिए सूचना मांग लेता हूं, जबकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उससे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, उस विषय से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, इसके बावजूद मैं उस पर सूचनाएं मांग रहा हूं। इस पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या लगा रखा है, वे मतलब क्या कहा है। उनका कहना है कि आप वो सूचनाएं मांग रहे हैं इस अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत, जो मांगने का आपको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि आप इसे बल्कि नोट भी कर लें। तो उन्होंने कहा है कि जो आईपीसी की एक धारा है, इंडियन पेनल कोड की एक धारा है 506, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, 506 ये एक धारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैसे अगर देखा जाए तो बुनियादी रूप से इस तरह से जो सूचना मांगी जा रही है ये आईपीसी की धारा 506 के तहत एक प्रकार की धमकी है, ये सामान्य बात नहीं है। मतलब आप एक जो तंत्र है, जो कार्यालय है या जो अधिकारी है, उसको आप धमकी दे रहे हैं कि भैया मैं तो इसका एक्टिविस्ट हूं, आप मुझे सूचना दीजिए, जबकि उस सूचना से आपका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो ऑफिस में जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी निर्णय लेने से डरने लगे हैं और उनको ये लगता है कि ये मैं निर्णय लूंगा और पता लगा कि सूचना के अधिकार के तहत फिर मुझे तंग किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये भी कहा है कि देखिए हम इस कानून के विरोध में नहीं है कि ये गलत कानून बना है, और ना हम इसके खिलाफ है कि सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो सुशासन का आधार है, गुड गवर्नेंस का आधार है, ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकार का मतलब कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है, अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादा के अंदर ही काम करते हैं, और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो सकता है कि हमें सूचना के अधिकार के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार करने पड़े कि आप इस दिशा निर्देश के अंतर्गत ही अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ही अब उच्चतम न्यायालय ने भी अपने को सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल कर लिया है, और बकायदे शामिल करने के साथ ही साथ उन्होंने एक निर्देश भी जारी किए हैं कि निर्देश की सूची जारी की है कि आपको इस फ्रेम में ही सूचना मिलेंगी, अगर इससे परे होगा तो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को अगर महसूस हुआ कि अपने बारे में उसे ऐसा करना चाहिए, तो अब हम देख रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन कि वह इसे दूसरों के बारे में भी करने पर विचार कर रही है, और उसने साफ कहा है कि जो सूचना के अधिकार का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है इसे इसी तरह से कंटिन्यू नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि ये फिर आप यूं कह लीजिए कि अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग करने जैसी स्थिति हो जाएगी। और सच पूछिए तो अगर आप व्यावहारिक जगत में हैं और समाज में इंटरेक्ट करते हैं तो ये वास्तव में एक व्यापार ही हो गया है, धमकी देने का एक आधार हो गया है, और इसका बहुत गलत उपयोग हो रहा है, जबकि यह इतना शक्तिशाली अस्त्र था नागरिक के पास कि वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके सरकार पर बहुत अच्छा प्रतिबंध लगा सकता था, प्रतिबंध मतलब जो भ्रष्टाचार है उस पर, लेकिन ये खुद एक प्रकार से भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। तो दोस्तों ये नए तथ्य हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सूचना का अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रियांशु विनायक पटेल, तन्मय कश्यप मुजफ्फरपुर बिहार से, अबू रेहन जामिया दिल्ली से, गौरव कुमार, रंजीत यादव, लक्ष्मी विश्वकर्मा, अनीस अहमद अमेठी उत्तर प्रदेश से, और निर्जला रानी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।